أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ترجمہ یہ ہے، او میرے پیغمبر، مسلمانوں سے بتلا دو اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے بہت عمدہ بات ہے، پاکیزہ بات ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی کو خبر ہے جو یہ کرتے ہیں. آیت نمبر 30، پارہ نمبر 18 سورۃ النور کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 احکام کو ان آیتوں میں بیان کیا، اس میں سے ایک جو ہے میں نے لاسٹ ویک کو بیان کیا، آج دوسرا حکم 6 میں سے بیان فرماتے ہیں. وہ دوسرا حکم بھی یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو. جیسے پہلا حکم تھا کہ کسی کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہ ہو، یہ بھی انسان کو زنا تک پہنچا دیتا ہے. اسی طرح آج کے سبق میں بھی فرمایا اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں النظر برید الزنا، نظر زنا کا ڈاک پوسٹ میں ہے. نظر جو ہے ایول آئیز، جو ہم کہتے ہیں کسی عورت پر یا مرد پر کرتے ہیں، یہ زنا کا پوسٹ میں ہے، یعنی یہ انسان کو آہستہ آہستہ زنا تک پہنچا دیتا ہے. یہ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا تتبع النظر تنظر فإن لك الأولى وليست لك الثانية. جب تمہاری کسی عورت پر ایک نظر پر جائیں تو یہ پہلی تو معاف ہے، جان بوجھ کر نہیں، اچانک نظر پر گئی پہلی معاف ہے، لیکن دوسری مرتبہ اس پر نظر نہ کرنا یہ گناہ ہے. بخاری شریف میں ہے آنکھوں سے دیکھنا بھی زنا ہے، کانوں سے شہوت کی باتیں سننا یہ بھی زنا ہے، زبان سے بات کرنا شہوت کی زنا ہے، ہاتھ سے چھونا زنا ہے، اور پیروں سے اس کی طرف چلنا بھی زنا ہے. ہم صرف زنا اس کو کہتے ہیں جو نارمل مرد اور عورت زنا کرتی ہے، لیکن یہ سب کے سب زنا کے اندر میں داخل ہوگا. یہ بخاری شریف میں ہے، چونکہ یہ انسان کو زنا کے قریب کر دیتی ہے. جب بری نگاہ پڑتی ہے تو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اس کی شکل، اس کی خوبصورتی، پھر سلولی سلولی دا وسپرز بلڈ اپ ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں وہ فاسد ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، اور پھر انسان کو گندا کام، برا کام کرنے کی ترغیب ہوتی ہے. اگر وہ عورت نہ بھی ملی تو اکیلا اکیلا بھی کوئی ایسا کام کرے گا جو زنا کی طرح ہوتا ہے، اور इसीलिए अल्लाह पाक ने सबसे पहले इस नजर से ही बचा लिया ताकि ये जीना तक न पहुंचे। बुखारी शरीफ में है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तो फरमाते हम हज में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कंकरी चुन लो उस जलीफा में शैतान को मारने के लिए, क्या कहा कंकरी चुनो, हमने कंकरी चुनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्योंकि अब सुबह किधर जाना है शैतान को कंकरी मारने के लिए। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते बुखारी शरीफ की हदीस है मेरे भाई फजल बिन अब्बास को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चल मेरे पीछे उठनी पर बैठ जा, पीछे बिठा लिया उठनी पर। अब उठनी खड़ी हुई चलने लगी, कबीले खशअम की एक खूबसूरत लड़की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई मसला पूछने के लिए, मसला पूछने के लिए आई, बहुत खूबसूरत थी, एहराम में थी। तो वो भी चूंकि फजल बहुत खूबसूरत था, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते मेरा भाई बहुत खूबसूरत था, एक दूसरे को देखने लगे, लड़की लड़के को, लड़का लड़की की तरफ देखने लगे। समझ में बात आ रही क्या कह रहा हूं मैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत में उसका सर पकड़ा ऐसे देख रहा था, ऐसा कर दिया पीछे, ऐसा कर पीछे बैठा होता था, और एक रिवायत में थोड़ी पकड़ी, दो रिवायत थे ऐसे पकड़ी ऐसा, यानी ये जगह ऐसी जहां देख ऐसा, ये काम नहीं करना चाहिए, बच्चे हैं पहले से ही बतला दिया। फजल बिन अब्बास, उसके बाद उस लड़की ने मसला पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप बहुत बुढ़े हैं, हज फर्ज है लेकिन वो सवारी पर बैठ नहीं सकते, क्या मैं उसकी तरफ से हज करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ ना तुम उसकी तरफ से हज पर लो। तो इस रिवायत से मालूम होता है निगाह से भी चेहरा फेर लो, देखा निगाह से भी क्या है चेहरा फेर लो, याद रखो ये बात। इसलिए अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को रास्ते में बैठने से मना फरमाया, सहाबा किराम पर घाटी में रास्ते में चौराहे पर बैठ जाते हैं। जैसे आजकल आप नहीं ना कभी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जाना तो गली में ऐसे सब मिल के बैठ जाते हैं, है ना, बैठते हैं चौराहे पर बैठ गए, कभी एक जगह कोने में बैठ करके सब बैठ के बातें करते रहते हैं। तो मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मना किया तो साहबा ने कहा इसके बगैर हमारा कोई चारा ही नहीं, हम यहां पर कहां बैठेंगे, छोटा मदीना कहां बैठे। मालूम होता है इस रिवायत से मिश्कात की कभी, चलो आपका जहन दोहराऊं, कभी लोग मुताला ही नहीं करते इस बात का मुताला नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गली होती है ना रास्ता, ये स्ट्रीट है ना, बीच में रास्ता होता है ना गलिया, जिसको गलिया कहते हैं, उस गलियों में 15 फीट का रास्ता होना चाहिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ताकि एक ऊंट गाड़ी आए एक ऊंट गाड़ी जाए। रिवायत में है मिश्कात की हदीस है। और आजकल क्या है मकान बनाते 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 इतनी गली के एक गाड़ी नहीं जा सकती, एक गाड़ी भी नहीं जा सकती है। गांवों में जाकर देखो कितना मुश्किल है, मैं जब हिंदुस्तान जाता हूं तो हमारे घर जाने के लिए गाड़ी भी नहीं जा सकती। अरे क्या हो गया यार, पहले दो दो गाड़ी जाती थी, लोगों ने मकान बनाते 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 रास्ते को बिल्कुल नैरो कर दिया, बिल्कुल करीब। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं उनके जमाने में साहबा ने फरमाया ईरान बहुत दूर है रहने के लिए जाने के लिए, तो आप हमारे लिए कोई नया शहर बनाए, नया शहर। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाया ठीक है कूफा के दरख्त काटो, कूफा है जहां हजरत अली चले गए थे बाद में, उसके दरख्त को काटो और वहां हम शहर बनाते हैं। हजरत उमर के जमाने में शहर बने, ये कूफा जो है दरख्त काटो और वहां का नक्शा मंगवाया हजरत उमर ने और देखा, फरमाया यहां यहां मस्जिदें बनेगी, यहां यहां दुकानें मार्केट बनेगी, यहां यहां मकान बनेंगे और जो गली है उसके दरमियान में 20 फीट का रास्ता होना चाहिए और जो मेन रोड है उसमें 40 फीट का होना चाहिए। हजरत उमर ने ये निजाम जारी किया था जब अमीर उलमोमिनीन थे और फरमाया मैमार को जो बनाने वाले थे, ये नक्शा मैं सुपुर्द करता हूं, अगर तुम लोगों ने कुछ इधर उधर गड़बड़ की तो मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, मैं किसी को भेजूंगा कि जैसे मैंने बताया ऐसा बनाया नहीं या नहीं। नहीं, आजकल अगर मेरा प्लॉट प्लॉट होता ना, फ्लैट में प्लॉट मुझे बेचना है तो मैं इधर से प्लॉट, अब बनाने वाला पूरा प्लॉट बनाता है इधर उधर और आने वाले के लिए कोई रास्ता ही नहीं, बल्कि चलने का रास्ता भी नहीं है। रिवायत में आता है कि इतना रास्ता रखो ताकि किसी को तकलीफ ना हो। ये रास्ता थोड़ी जमीन है, चलो भाई छोड़ दो तुम थोड़ी जमीन आने जाने वालों के लिए, रास्ते के लिए, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। जब तक ये रास्ता बाकी रहेगा तुमको सवाब पहुंचता रहेगा, जब तक ये रास्ता है ना। अगर तुमने इतनी जमीन का पैसे तो ले लिए, बना लिया, मिला क्या, दुनिया में रखकर चले गए, लेकिन अपने रास्ता बनाकर गए लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी, तो दुनिया में भी सवाब, मरने के बाद कब्र में भी सवाब, कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। इसलिए बाज़ मर्तबा बेचारों को जल्दी होता है, जाना होता है और एक ही गाड़ी भी नहीं जा सकती, दूसरी कैसे जाएगी, आएगी कैसे। ये बयान तो गांव में होना चाहिए, ये बयान तो कहां होना चाहिए, गांव में होना चाहिए। हमारे गांव जो जाते हैं ना, हमने तो कभी किसी मौलवी से बयान सुना ही नहीं है। इसीलिए लोग आज माशी जिंदगी का बहुत मुताला करते हैं, कैसे कमाना, कैसे खर्च करना, क्या करना, कैसे इन्वेस्ट करना, लेकिन इन चीजों के तो कोई मुताला ही नहीं करता है। 200-300 साल से मुसलमान ये सब भूल गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया है। तो मैं आपको अबू सईद खुदरी दिल का हदीस सुना रहा था, बात थोड़ी इधर अच्छी लगी। हदीस ये है कि फरमाया रास्ते में मत बैठा करो, अल्लाह के रसूल कैसे चलेगा। तो फरमाया अगर बैठना है तो रास्ते का हक अदा करना पड़ेगा, रास्ते का हक अदा करना पड़ेगा। तो साहबा ने फरमाया रास्ते का भी कोई राइट्स होता है, ये रास्ता जा रहा उसका भी कोई राइट्स है, अगर आप बैठ गए या चौड़ा है पर सामने तो क्या उस रास्ते का कोई राइट्स है। फरमाया हाँ रास्ते का भी राइट्स है, कोई ऐसा काम न करो कि आने जाने वाले को तकलीफ हो। केले खाते बैठे बैठे छिलके डाल देते, मूंगफली खाते हमारे तो मूंगफली बैठे बैठे खाते हैं सब और रास्ते में डालते, आने जाने वाले के लिए तकलीफ। संतरे खाते हैं छिलके डाल दिए, कोई भी ऐसा काम हो, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, यानी आने जाने वाले को रास्ते में कोई तकलीफ हो ऐसा काम नहीं करना है। जाहिरी बात तुम बैठे हो यहां तो आने जाने वाले आपको सलाम करेंगे, यू हैव टू रिप्लाई देम, सलाम का जवाब भी दो। और जाहिरी बात आप लोग बैठे हैं तो कोई अनजान आदमी आ गया तो अनजाने आदमी आपसे पूछे भाई फुला का मकान किधर है या रास्ता किधर है, तो आप उनको रास्ता बताओ, गाइड करो। हमारे यहां पे अजीब माहौल हो गया। कल परसों में याकूब भाई से बात कर रहा, हमारे हिंदुस्तान आपके यहां पाकिस्तान में तो नहीं खबर, जिस गांव में जो सफरी आता है यानी बाहर से कोई आता है लंदन से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से, तो वो जो बैठे हैं ना चौराहे पर, वो आने वाले फुकरा को कहते हैं गांव में कहीं नहीं जाना, अपना जगह जाओ, लंदन से आए वो देंगे आपको। सीधा उस बेचारे को फकीर को पता नहीं, हमने पूछे किसने बताया, वो पीछे बैठे उन्होंने बताया कि यहां जाना है। समझ में, अब पूरा दिन ही चलते रहते हैं ना, आपको कोई काम करने में समझ आती है ना कुछ करना है। याकूब भाई अभी तो मैं सामान यहां से जब गए ना, मुझे सुना रहे थे कल कि मैंने भी सामान उठा रहा था और वो कह रहे हैं भाई कुछ पैसे लाओ ना, मुझे किसी ने भेजा है आपके यहाँ। अरे भाई मैंने भी सामान उठा रहा हूँ, अभी तो आया हूँ, घर में नहीं गया हूं, किसने भेजा था, फुलाने भेजा, वहां बैठे हुए उन्होंने भेजा। समझ में आई बात, ये बात नहीं है, परेशान करना नहीं है किसी को, मतलब कोई आदमी लॉस हो गया उसकी गाइड करो, उसको रास्ता बना बताओ, ये है। और सबसे आखिर में दूसरी दो बात जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस जगह में रास्ते में कोई गुनाह का काम करते हो तो तुम उसकी तबलीग करो, उसको मना करो और अच्छे काम का हुक्म करो, भाई ये गलत कर रहे हो तुम रास्ते में। और आखिरी बात जो इस आयत में है, कुल लिल मुमिनीना, निगाह नीची रखना, तुम बैठे हो रास्ते में इसलिए कि लड़कियां भी जाएगी, औरतें भी जाएंगे, मर्द भी जाएंगे, अपनी निगाह को नीची रखना। हां, इसलिए जब हम रास्ते में चले ना तो रिवायत में आता है अपनी निगाह को इधर उधर न घुमाओ, उससे दिल गाफिल हो जाएगा। क्या हो जाता है? दिल गाफिल हो जाता है। क्यों? इसलिए कि किसी का अक्स आपके ऊपर आएगा, किसी का बाल खुले हैं, किसी कौन है, क्या क्या है, फुला 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 बहुत सारे, तो उसका अक्स आप पर आएगा, तो बजाय जिक्र के आप गफलत में पड़ जाओगे, फिर वही सोचोगे। इसलिए निगाह नीचे रखकर चलोगे तो जाहिर बात अल्लाह का जिक्र की भी तौफीक होगी और अपना कोई मसला भी सोच सकते हैं। बट अगर आपने ऐसा देखा ऐसा देखा ऐसा देखा, देखते रहे तो आपका दिल तो गफलत में है और ज्यादा गाफिल हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है जो इस आयत में है, और सहाबाए किराम की जमात जा रही है, जमात है। और उस जमाने के अंग्रेज ने यूं कहा, यानी ऐसे लोग गैर मुस्लिम थे, ईमान वाले नहीं थे, कि इन लोगों को सहाबाए किराम को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि अपनी खूबसूरत लड़कियों को रास्ते में खड़ी कर दो, नंगे बाल बदन, तो ये देखेंगे उन पर पागल हो जाएंगे। तो फिर सहाबी ने जो अमीर जमात थे उन्होंने यही आयत पढ़ी, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, अपनी निगाह नीची रखो। इसलिए उन लोगों के पास तो कुरान तो लिखा हुआ नहीं था, वो तो हजरत उस्मान के जमाने में लिखा गया, बुखारी शरीफ तो नहीं थी, कुरान लिखा हुआ था उनके दिल में, सुना अमल, कान की आयत कान में, आग की आयत आग में, लिखा सब कुरान उनके बदन में था, ऐसा ही पड़ा, सबके नीचे देख लिया, गुजर गए। तो उन लोगों ने पूछा औरतों से, तुमने कुछ नहीं किया? कहा ये देव आमद, ऐसा लगता है कोई फरिश्ते आए हैं, तो हमको देखा ही नहीं है। समझ में आई बात? ये चीज आदमी को फिसलने के लिए और फिसलाने के लिए शैतान यही काम कर, इसलिए कुरान करीम की आयत दूसरा कानून है, कुल लिल मुमिनीना टेल द बिलीवर्स, अल्लाह इज टेलिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टेल द बिलीवर्स लिल मुमिनीना मिन अबसारहिम, बाज जगहों में अपनी निगाह नीची रखो। मिन का लफ्ज है खास करके गैर महरम औरतों पर और अजनबी जगह में, ये मिन से मुफस्सिर फरमाते हैं। दूसरा हुक्म बयान किया, वयहफजू फुरूजहुम, मर्द और औरतें, खासकर मर्दों का जिक्र है यहां, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाह की क्या करें, हिफाजत करें। सही हदीस है बुखारी शरीफ की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं यकफ्फलनी मा बैन लिहयैही लिहयैही, जो आदमी दो जबड़ों के दरमियान जबान की, वह बैन रिजलैनी, और दो पैरों के दरमियान शर्मगाह की हिफाजत करे, मुझसे जिम्मेदारी ले हिफाजत की, अकफल लहुल जन्ना, मैं उसके लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूं, जन्नत की। इसलिए कि जबान से गीबत बोहतान न मालूम बकवास और क्या होता, और शर्मगाह से इंसान कहां से कहां फसाद फैलाता है। इसलिए नबी अकरम साहब फरमाया, निगाह नीची रखो, उससे शर्मगाह की हिफाजत होगी। वरना हदीस में है, लअनल्लाहु अन्नाज़िर वल मंज़ूर, अल्लाह की लानत है जो चहबत की निगाह से देखने वाला मर्द, और अगर उसकी तरफ औरत देखे मंजूर دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے حدیث میں ہے نگاہ پڑے فوراً ہٹا لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت بریدہ کی روایت جو حاشیہ میں لکھی ہے، جو آدمی نگاہ پڑے ہٹا لے، اللہ اس کے دل میں ایسی چاشنی سویٹنس پیدا کرے گا جس سے اس کو عبادت میں ایسا مزہ آئے گا کہ زبان پر اس کی مٹھاس معلوم ہوگی. عبادت میں مزہ آئے گا. یہ چیز ہے، ہمارے شیخ حکیم اختر صاحب اس پر بہت زور دیتے تھے، بہت زور دیتے تھے، نگانی چھڑکو نگانی چھڑکو. اور فرماتے تھے تم لوگ پلین میں بیٹھے ہو، ایئر ہوسٹس آتی ہے کھانا دینے کے، انہیں بولنے کا انداز ہے، بولے کیا چاہیے، تو کتنے اچھی تم سے بات کرتے ہو، اور نہ چاہیے پھر بھی بات کرتے ہو. نگاہ نیچی رکھو، کہو یہ چاہیے. نہیں بات، یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، بہت زور دیتے تھے اس پر، بہت زور. اس لیے کہ تمہاری عبادت کی حلاوت ختم ہوتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ ان نگاہوں، بری نگاہوں کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. بے شمار واقعات ہمارے حضرت کی کتاب تم پڑھو گے، ہائے ہائے بری نگاہوں سے کیا کیا فسادات آتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی حلاوت ایمان کے لیے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ، بری نگاہ شیطان کے پوائزن تیروں میں سے تیر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوائزن ایروز ہوتا ہے، پوائزن ایروز، پوائزن ایروز ہے. فرمایا یہ شیطان کا ایروز ہے، نگاہ تو دیکھنا تو سیدھا سم غیر محرم. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے. اللہ کے یہاں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور قیامت میں بھی. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وہ کہہ رہے ہیں تم اپنی نگاہوں کو جدھر گھماتے ہو اللہ کو پتا ہے کس نیت سے گھمایا آپ نے. اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد ایک اور قانون، تیسرا قانون، مردوں کے لیے تو ہو گیا لیکن ہماری مائیں اور بہنیں شاید گھر پر سن لیں، ہم سنا دیں. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. اور میرے نبی آپ بتلا دیجئے اپنی صحابیات کو، مومنات کو، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. عورتوں کو بھی حکم نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ہاں حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایک نابینا گئے، دونوں دیکھنے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا چہرہ پھیر دو. فرمایا اللہ کے حبیب یہ تو نابینا ہے، یہ تو کیا ہے، نابینا ہے، یہ تو نابینا ہے، وہ تو ہمیں دیکھتا نہیں ہے. فرمایا وہ نابینا ہے، تم دونوں نابینا ہو، تم کیوں دیکھ رہی ہو. اس حدیث میں عورتوں کو ایسے آدمی کو دیکھنے سے منع فرمایا جو بلائنڈ ہے، حالانکہ بلائنڈ آدمی تو اس کو نہیں دیکھتا. بلائنڈ بات سننا رہی ہے. اس کے مقابل میں دوسری حدیث، اور وہ حدیث ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، شی واز میرڈ ٹو ابو عمر، دونوں میں بہت گڑبڑ ہو گئی لیکن
अबू उमर ने घर पर तलाक नहीं दी, सफर में भाग गए, सफर में चले गए और अपनी तरफ से किसी को वकील बनाया थ्रू सॉलिसिटर, आज के जमाने में समझो थ्रू सॉलिसिटर तलाक भेज दी। क्यों? पता था कि फातिमा की फैमिली इसको मारेगी, कुछ गड़बड़ होगी या वो गुस्से होगी, तो सफर में चले गए और अपने कजन से कहा ये लेटर में लिख के जाता हूं, मैं चला जाऊं उसके बाद दे देना और इतना गल्ला है उसको दे देना। उसमें लिख दिया तेरे लिए मेरी तरफ से कोई खर्चा नहीं, मकान नहीं, उसमें तुझे 3 तलाक है, तलाक दे दी। हजरत फातिमा बिन्त कैस रोती हुई गई, पहले तो शाउटिंग करने लगी उस वकील को, ये तुझे किसने वकालत करने का हुक्म दिया उसकी तरफ से? उसने कहा मैं तो वकील हूं भाई, मुझे क्यों शाउट कर रही है, मुझे तो कहा गया तो मैं तुमको लेटर दे रही हूं, दे रहा हूं उसके, मेरा तेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस लेटर को लेकर गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो लिखा हुआ था और जो मसला था मसला था, ये चाहती थी मुझे बहुत कुछ मिले, ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, जैसे आजकल होता ना कि तलाक दे मुझे ये मकान मिल जाए ये मकान मिल जाए सब कुछ मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा करो तुम, उस घर से निकलना ही पड़ेगा तुमको, अब तुम्हें इद्दत गुजारना है उम्मे शरीक के मकान पर, उम्मे शरीक के मकान पर, वो औरत है साहबिया, थोड़ी देर के बाद नहीं नहीं वहां नहीं गुजार, पहले कहा उम्मे शरीक के मकान पर। मदीना मुनव्वरा में बास साहबियात ऐसी थी जिनका मकान गोया के कहो के मेहमानों के लिए दरवाजा खुला था, बहुत मेहमान आते थे, वो खाना पकाती थी अपनी खादिमाओं से गुलामों से पकवा कर खिलाती। सहाबाए किराम जब इस्लाम फैलने लगा तो दूर दूर से इल्म हासिल करने के लिए मदीना मुनव्वरा आते थे, उनके खाने पीने का मसला होता था, मस्जिद में सो तो जाते थे कहीं सोने का तो प्रॉब्लम नहीं, खाने का, जैसे हजरत रमला रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके मकान पर, तो मकान तो क्या उनका तो किला था, 800-800 सहाबा एक एक वक्त में खाना खाते थे, कभी सुना आपने? वो तालीम हासिल करने के लिए आते थे ना वो सहाबा, जो मेहमान खाना था उनके लिए एक एक वक्त में 800-800 सहाबा के लिए वो खाना पकवाती थी। बहुत ऐसे बहुत सारे सहाबियात थे, तो उनमें से उम्मे शरीक भी थी और उम्मे शरीक के मकान पर सहाबा आते जाते खाने के लिए आते जाते बंदोबस्त कर देती थी, वो खाने का खादिम वगैरह रख देते दस्तर खाना खा के चले जाते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फातिमा तुम वहां नहीं, तुम जवान हो इसलिए कि वहां तुम्हारे लिए इज्जत गुजारना मुश्किल हो जाएगा, वो सहाबा आने जाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा करो तुम अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो नाबीना है उन सहाबी के घर पर पीछे रहकर इतर गुजार दो, इसलिए कि वो तो नाबीना है देखेंगे नहीं, अपने कपड़े अपने जो भी कुछ रखने हैं वहां रख लो, इधर गुजार लो, कुछ भी नहीं था उनके पास फातिमा के पास वहां गुजार लो। चली गई, एक नसीहत कर दी तीन शरीर करीज है तेरी इद्दत गुजार है, याद औरत जब इद्दत में बैठी हो तो उनको प्रपोजल नहीं भेजना चाहिए, जायज नहीं है, इद्दत में हो तो प्रपोजल नहीं, वरना इद्दत क्या गुजारेगी 3 महीने की, खुसूसन जिसका शौहर इंतकाल कर जाए। इद्दत जैसी पूरी हुई तो दो सहाबा ने अपना प्रपोजल भेज दिया फातिमा के साथ, एक हजरत मुआविया थे, ये मुआविया नहीं, मुआविया जो वो नहीं दूसरे मुआविया, और एक अबू जहन थे। तो इद्दत पूरी हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबी का प्रपोजल आया है क्या करो, तो मैं किसका? फरमाया अबू जहम का आया है। नहीं क्या हुआ? वो तो लाठी नीचे रखता ही नहीं, तीन मिनट के लिए, यू नो द लाठी डंडा ऑब्वियस की भी है, वो तो लाठी नीचे रखता ही नहीं और तू है बहुत नरम, मार खा के मर जाएगी। अरबों में जब कोई आदमी सख्त होता था ना तो उनको इस तरीके से लफ्ज इस्तेमाल करते अल्लाह के नबी, वो तो लाठी रखता ही नहीं, इन डंडा लशदीद तेरे काम के नहीं हो। मालूम होता है जब कोई प्रपोजल के बारे में आपसे मशवरा करे तो अगर आप जानते हो तो सही मशवरा दो भाई, ठीक है नहीं है क्या है, गलत मशवरा ना दो। हाँ बहुत अगर चलो 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 बेचारे परेशान हो जाए, ये सदी से भी पता चलता है ना, अल्लाह को नहीं नहीं वहां नहीं करना। और मुआविया, अरे मुआविया गरीब है और तुझे चाहिए पैसे, गरीब है तेरा गुजारा नहीं होगा, ऐसा करो तुम, मेरी राय ये है उसामा से शादी कर लो। किससे? और उसामा तो जिस तरह हसन हुसैन नबी को प्यारे थे इतना उसामा भी प्यारा था, जैसे हसन हुसैन को बिठाते थे उसामा को भी अपने पास बिठाते थे, वो जैद के बेटे थे और जैद का आपको वाकया पता है ना, जिनको हजरत खदीजा को बेच दिया था, हजरत खदीजा ने हदिया बनाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था, और वही जैद जिनको मताब में ले जाकर कहा था ऐ मक्का वाले सुन लो ये मेरा बेटा है जैद, तो इतना मशहूर हो गए जैद बिन मोहम्मद उनके बेटे उसामा। तो फातिमा का जरा मुंह बिगड़ गया है क्योंकि वो गुलाम का बेटा है, लगा बाज होते फातिमा तो बहुत फ्री माइंड थी, खूबसूरत लड़की थी, तो जरा मुंह बिगड़ गया। अल्लाह के ने फरमाया नहीं नहीं मैं दुआ करता हूं, शादी कर दी। और अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई कि फातिमा और उसामा जिस रास्ते से जाते थे मदीने वाले रश्क करते थे, क्या मोहब्बत अल्लाह पाक ने उन दोनों के दरमियान में नबी की दुआ से दे दी, और अल्लाह पाक ने इतनी बरकत भी दे दी हजरत उसामा को, और फातिमा के दिल में उसामा की मोहब्बत और उसामा के दिल में फातिमा की मोहब्बत। खैर मैंने तो ये दो हदीस इसलिए सुनाई कि इसमें इब्ने उम्मे मक्तूम के घर में इद्दत गुजारने का हुक्म दिया और वहां उम्मे सलमा को और हजरत मैमूना को मना किया कि वो तो तुमको नहीं देख रहा है, तुम क्यों उनको देख रही है, दोनों हदीस मन में आ गई मेरी अपोजिट है। इसलिए बास फुकहा ने कहा कि अगर मर्द ना देखे औरत, क्योंकि मर्द ज्यादा देखता है, अगर औरत देख ले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये बात सही नहीं है, मर्दों को भी औरतों की तरफ देखना नहीं है, औरतों को भी मर्दों की तरफ देखना नहीं है, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है ला यंजुरु रजुल इला औरतिल रजुल वला तंजुरुल मरअतु इला औरतिल मरआ, मर्द मर्द की औरत की तरफ और मर्द की तरफ नहीं देख, शतर की तरफ भी नहीं, समझ में बात आ रही। मैं यहां चूंकि मजबूरी थी फातिमा के लिए कुछ था ही नहीं, तो एक रास्ता मजबूरी के दर्जे में कहा वहां इद्दत गुजार ले। एक और मसला है हिजरे लोग, पता है मुखन्नस, चलो ना यार तफसीर में कब सुनोगे, लोग नहीं सुनते तुम तो सुन लो, मुखन्नस हिजरे जो ना मर्द ना औरत, उनका मसला एक मुखन्नस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के घर आता रहता था, बात करता अजवाज के साथ, सब यही समझते थे कि ये न कुछ काम का खाना पीने वाला है, सिर्फ सोने वाला, कुछ नहीं इसके अंदर, यानी ये न मर्द है न औरत। मेरी बात सुन रही है? मुखन्नस हिजरा, और बहुत सारे ऐसे हैं। एक बात और सुनो, हिजरे क्यों पैदा होते पता है? हमारे शेख यूनुस साहब ने सुनाया था, जो मर्द अपनी बीवी के साथ हालत हैज में जिमा करता है अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए उसे हिजरे पैदा होते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड इफ अ मैन इंटरकोर्स विद हिज वाइफ हिजरे पैदा होते हैं, नो मैन नो लेडी। हाँ ये तो याद आ गई मुझे, हिजरे पैदा होते ही। तो बात करता था वो हजरत आयशा के साथ, हजरत मैमूना, हजरत उम्मे सलमा के साथ जैसे नॉर्मल। वो समझते थे कि ये तो कुछ नहीं है। शायद मैंने काफी मर्तबा देखा हरम शरीफ में औरतों को निकालने वाले भी हिजरे थे, वो मुसलमान थे, जो औरत जब टाइम हो जाता नमाज का तो बाहर निकालते हैं, ज़ियारत का टाइम पूरा हो जाता, लेकिन बाद में इन्होंने बदल दिया। इस हदीस में बहुत अच्छी बात है, एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, वन ऑफ द वाइफ से ये एक मुखन्नस कह रहा था, यू नो दैट फुला औरत आती है वो बहुत, उसको लफ्ज उसको क्या कह रहे हैं कि सिलोट पड़ते हैं ऐसे, ऐसा यानी ऐसी ऐसा उसको जब ये आती है तो उसके चार सिलोट नजर आते हैं, मोटी होगी तो उसके सिलोट नजर आते हैं, और जब जाती है तो मुझे आठ नजर आते हैं। क्या कहा? ये कहा तो अल्लाह के नबी शासन, मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग भी, ये भी जानते हैं औरतों के बारे में, ये लोग औरतों के बारे में। निकाल दिया उसको, सारी बीवियों से कहा खबरदार इन लोगों से बात नहीं करना, पर्दा करो। इससे मालूम होता है मुखन्नस से भी क्या करना है, पर्दा करना। इसलिए मैंने हदीस में है ना, तो इस रिवायत में वकुल्लिल मुमिनाती यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहें औरतें नीची रखें, बहुत जरूरी है। वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिन्हा, क्या करें, जाहिर ना करें अपने बनाओ सिंगार को, ब्यूटी को जाहिर न करे, डोंट एक्सपोज, डोंट ओपन, न दिखाए, जैसे पाजेब, बाली पाजेब होता है यहां पहनते तो वो चलते हैं तो खन 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 आवाज आती है ना, तो मर्दों को बुलाती है, तो मुतवज्जे होते हैं मर्द, परफ्यूम डाल के निकली तो लोग मुतवज्जे होंगे। समझना बात आ रही है, ये सब इसमें ताकि है, बिल्कुल एक्सपोज न करे, दिखाए नहीं, मगर कह रहे हैं इल्ला जो जाहिर है उसमें से। अब क्या जाहिर है उसके बारे में लिखा है, यहां तक हाथ और नीचे पैर, एंकल भी सतर में है। औरत का अगर एंकल नमाज में खुला है नमाज नहीं होगी, एंकल से नीचे उसको इजार पहन लिया, समझ में आई बात? यहां तक पहनते हैं बात, तो यहां तक पहनते हैं। बाल लंबे हो, चौथाई भी अगर उसके बाल खुले हैं, जिसका हरम एहराम में काटा गया वो हज के उमरा के अंदर, तीन बार सुभान अल्लाह ज्यादा नमाज में खुला है, नमाज नहीं होगी, टूट जाएगी। ये चेहरा खुला, ये हाथ और नीचे एंकल से नीचे, ये जहर है। ये शुरू जमाने में हुक्म था, शुरू जमाने में ये हुक्म था, लेकिन बाद के मुताखिरीन फुकहा ने जैसे दुर्रे मुख्तार में, फतावा शामी में मसला लिखा है, फी जमानिना, चूंकि आहिस्ता आहिस्ता अब तो हालात बदलते चले गए, फरमाया फी जमानिना चेहरे को छुपाना फर्ज है, चूंकि आजकल चेहरे को देखकर भी कशिश होती है, आदमी फितने में पड़ जाता है, समझ रहे बात, इसका छुपाना फर्ज है। हाँ अगर कहीं ऐसा सफर है, डाक है, कोई नहीं है, चेहरा खोल दिया, प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसी जगह है जहां कोई नहीं है, चेहरा खोला, यानी बाहर की बात कर, घर की नहीं, बाहर की बात कर रहा हूं, सफर में रात का सफर है, कोई नहीं है, अपनी गाड़ी में है, खोल, कोई नहीं है, लेकिन एहतियात। इसीलिए औरतों के लिए एहराम में चेहरा छुपाना नहीं है, चेहरा छुपाना इसका यह मतलब नहीं कि खुले चेहरे चलती रहे, सामने कोई मर्द आ जाए तो अपना इस तरह कर ले। एहराम में भी ये तो हमने निकाला है, सहाबियात की बात कर रहा हूं, वो इस तरीके से अपने आप को ओढ़नी से छुपा लेती थी, कोई मर्द गुजरता था। अब कल तो ये वो है, वो कैप निकला है उसके ऊपर से वो हिजाब लटका देते हैं, इसलिए कि ये टच नहीं होना चाहिए। औरतों का एहराम चेहरे में है, मर्दों का एहराम सर, सर नहीं छुपा। सहाबियात के जमाने में ये है, बहुत जरूरी है। अल्लाह फरमाते वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा वला यद्रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। खमर के माना ढांपना, और खमर शराब को भी कहते हैं, इसलिए शराब पीता है तो आदमी की अकल ढांप जाती है, पता ही नहीं क्या बोलता है, इसलिए ओरनी को भी खमर कहते हैं। और यद्रिबन है दरब, यद्रिब मारना यानी रखना जरूरी है ओरनी को। अरब लोग जो हैं इस किस्म के इसका पहनते थे कि पीछे तक चला जाता था लेकिन आगे खुला होता था। अल्लाह ने इसके अपोजिट बताया कि इतना बड़ा आप दुपट्टा पहने कि आपकी छाती जो है जिसमें कशिश है कि वो भी छुप जाए। वो भी क्या है, कपड़े के अलावा ऊपर के जो ये क्या कह रहे हैं जुयूब जिसको कहते हैं उसको, इसी का तर्जुमा यहां किया है देखिए। और अपने कुर्ते के गिरेबानों पर जो श्रृंगार की चीज है दुपट्टा डाल दें। और आजकल के दुपट्टा छोटे होते हैं बस इतना, वो कपड़ा पहने तो भी उसका उभार नजर आता है, नहीं है लटकाना पड़ेगा बाद अब जिसको हम छोटा अबाया कहते हैं, नमाज का अबाया पहन ले, ये चीज है। और आगे फरमाया वला युब्दीन ज़ीनतुन्ना, अपनी जीनत को न खोले इल्ला लिबुउलतिन्ना। हाँ शौहरों के सामने खोल सकती है, शौहर है महरम है उसका, लेकिन ये भी जब तक निकाह में है तो महरम है, तलाक हो गई तो गैर महरम। महरम की दो किस्में ना, एक तो अबदी महरम बाप है हमेशा के लिए महरम है, कभी निकाह नहीं हो सकता, भाई है मामू है चचा है अबदी महरम है ये बेटा है, और एक है टेम्पररी महरम है। और वो जैसे मैंने आपको मिसाल दी अवाबाइन्ना, और क्या कह रहे हैं अपने खाविंदों को ठीक है, या अपने बाप के सामने, बाप है इसका ये मतलब नहीं है कपड़े खोल दे, मर्द का सतर नाप के ऊपर से या नाप से अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा नाप से, नाप के ऊपर से नीक तक, नी के नीचे तक, नाप से लेकर नी के नीचे तक ये सतर है मर्द का। औरत का पूरा बदन सतर है, इसलिए औरत का मीनिंग ही सतर है। औरत की मीनिंग क्या है, सतर, सिवाय जो तीन मैंने बताया उसमें भी बाहर जाए तो। तो अब आप हाँ अगर बाल खुले, घर में शौहर है बेटे हैं बेटी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर की बात है, समझ में आई बात। आजकल अरबों में भी यही हालत है, घर के अंदर में बेतकल्लुफ है अपने, क्या है महरम है अपने, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है, ये भी मतलब नहीं। मैं कभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह कि बाज मरतबा आजकल के लोग इस किस्म की चीजों को देखकर अपनी बेटियों के साथ भी जिना करते हैं। मेरे पास तीन चार केस आ गए, उनसे तो और ज्यादा छुपा, डेंजरस तो घर में है। अपने बापों के सामने और अपने सुसरों खुसर, जो शौहर का बाप होता है ठीक है, इसलिए कि वो क्या हो जाता है इसकी वजह से उसके बेटा शादी किए। अब अबनाइहिन्ना, और अपने बेटों के सामने और अपने शौहरों के बेटों के सामने, यानी शौहर पहले अगर शादी की होगी वो बच्चा लेकर आया सोटेल औलाद जिसको कहते हैं तो ठीक है। अव इख्वानिहिन्ना, और अपने भाइयों के सामने, अव बनी इख्वानिहिन्ना, और अपने बनी इख्वानिहिन्ना भतीजों के सामने, भतीजे भतीजिया, और अव बनी अख्वातिहिन्ना भांजे के सामने, बहनों के बच्चे ये भी महरम में दाखिल है। अव निसाइहिन्ना, मुस्लिम औरतों के सामने,
मुस्लिम औरतें,
और साथ में असलाब फरमाते हैं काफिर औरतों के सामने भी असलाब है, असलाब की औरतें हैं वो अपना एक्सपोज जिनत नहीं करती थी, और मैं जैसे मर्द के सामने करते हैं ऐसे इन काफिर के सामने भी इस तरह खुलाना खोलना जायज नहीं है। लेकिन जरूरत हो, मसला फिका का सुन लो, ऐसी जरूरत है कि अब औरत को अपना सतर खोलना लाजमी है, कोई डॉक्टर ही नहीं है और ये डॉक्टर गैर महरम है मुसलमान या गैर मुस्लिम, तो फिर लाजमी जरूरी है, तो फिर पहले तलाश करो कोई लेडी डॉक्टर हो, लेकिन लेडी डॉक्टर नहीं है तो ऐसी सूरत के अंदर में मजबूरी के तौर पर आप अपने सतर को खोल सकते हैं जहां जान का खतरा है। सही बात है, जैसे बेबी है डिलीवरी के टाइम, इसीलिए अपनी बेटियों को जो क्लेवर हो उनको लेडी डॉक्टर बनाओ ताकि मुसलमानों के लिए आसान हो। इन मुल्कों में तो देखो ना कहां हमारी मुसलमान की बेटियां बहुत कम है, वरना ज्यादातर तो यही लोग नॉन मुस्लिम इंडिया से वहां से लोग आते यही डॉक्टर से, ये जरूरी है। औ मा मलकत अयमानुहुन्ना, या फिर किसके सामने, बांडियों के सामने, गुलाम के सामने भी खोलना जायज नहीं है, बांडी ठीक है। औ मा मलकत अयमानुहुन्ना अबिताबीना गैर उलिल इरबत मिनर रिजाल, या घर के काम काज करने वाले मर्दों को जिनको औरत की ख्वाहिश नहीं, घर के अंदर काम करने वाले ऐसे जिनको कोई ख्वाहिश ही नहीं, जिसको कहते हैं बिल्कुल यहाँ शी में उसके बारे में लिखा है बहुत अच्छा है, यहाँ पर उसको देखने जैसा है, फरमाते हैं बुढ़ापे की वजह से या पागलपने की वजह से वाजे है कि मुखन्नस नहीं, यानी ऐसे लोग जो बहुत बुढ़ा है या फिर काम करता है या कोई काम करने सिवाय खाने पीने और सोने के, लेकिन अगर तुम्हें शक हो कि ये भी इस किस्म की ख्वाहिश में दाखिल है तो फिर जायज नहीं है, ये देखने के हिसाब से है, ये उस जमाने का मसला है। अभी तिफ्लिल लदीन लम यज़हरू अला औरातिन निसा, उन लड़कों को जो औरतों के भेद से आगा नहीं, छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ पता नहीं ये क्या है सतर वगैरह, उनके सामने ठीक है, उसके बारे में भी यहां पर लिखा है तीसरे हाशिए के अंदर आगे क्या। लेकिन अगर बच्चे समझदार हो जाए 6-7 साल के, समझते हैं कि शहवत क्या है या सतर क्या है, तो फिर उनके सामने भी मां को अपने ऐसी बच्चों के सामने भी, बल्कि उन बच्चों को भी सतर छुपाना चाहिए जो 6 साल समझदार बच्चे हो जाते हैं 7-8 साल के। वाला यदरी, अब तो आजकल तो फल पकने से पहले ही पक जाते हैं अशफाक भाई, हमारे उस्ताद कहते हैं फल पकने से पहले ही पक जाते हैं, यानी बालिग होने से पहले ही बालिग हो जाते हैं, नहीं समझे मेरी बात, चलो नहीं समझे। वला यद्रिब नबी अर्जुलिहिन्ना, और अपने पांव जमीन पर न मारे पाजे पहनकर, देखा अल्लाह ने मना कर दिया, वरना आवाज आएगी लोग सुनेंगे चलने वाले देखेंगे तुम्हारी तरफ, जहां जहां तक आवाज जाएगी सबका गुनाह तुझ पर, खुशबू लगा के जाएगी जहां जहां तक तेरे खुशबू जाएगी सबका गुनाह तुझ पर, बाहर की बात है घर की नहीं, बाहर की बात, ताकि जान ले कि ये वो आज़ा है जिनकी जीनत को छुपाना जरूरी है। अल्लाह आगे फरमाते वतूबू इलल्लाहि जमीया, गलती तो हो ही जाती है कभी ना कभी, गुनाह तो हो जाता है, तौबा किया करो अय्युहल मुमिनून, ए मोमिनो तौबू इलल्लाहि जमीया, ये एक ऐसा गुनाह है जो आम गुनाह है, सारे लोग ही रोड पर ऐसा ही काम करते, फरमाया सब मिलकर अल्लाह के सामने तौबा करो, अय्युल मोमिनून ए मोमिनो लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम क्या हो जाओ कामयाब हो जाओ, क्या हो जाओ कामयाब, का क्या मतलब दुनिया में भी परेशान ना हो, कब्र में भी अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, कयामत के दिन भी माफ कर दे, ये फलाह है, फलाह का माना है दुनिया की भी कामयाबी कब्र और आखिरत की भी कामयाबी, हय्या अलल फलाह में जैसे कहते हैं नमाज पढ़ो दुनिया की भी कामयाबी आखिरत की भी, यहाँ भी तुफ्लिहून का माना है दुनिया में भी अल्लाह तुम्हें बचाएगा ईमान की हलावत देगा, कब्र के अजाब से बचोगे, ईमान पर मौत आएगी और कयामत के दिन भी अल्लाह तुम्हें वेलकम करेगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये आयत नंबर 31 खत्म हुई, इंशाल्लाह फिर बयान करेंगे। या अर्रहमान रहीम या रब्ब जलाल या हय्यु या क़य्यूम या हन्नान या मन्नान يا بديع السماوات والأرض اللهم صل وسلم دائما أبدا.
अला हबीबी का खैर ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह तेरे कुरान की मोहब्बत में बैठे हैं बहुत मोहब्बत के साथ प्यार के साथ तेरे कुरान को हम सुन रहे हैं मजे लेकर सुन रहे हैं अल्लाह इस कुरान की चाशनी हमें नसीब फरमा, इसके पढ़ने की मोहब्बत हमें नसीब फरमा, हमारी इबादतों में हलावत पैदा फरमा, हमारी इबादतों में चाशनी पैदा फरमा, या अल्लाह बद निगाहों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरी निगाहों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे ख्यालात से विस्पर से अल्लाह इस कुरान के वास्ते से तुझसे मांगते हैं हमारी हिफाजत फरमा, हमारी आला औलाद की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, अल्लाह जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं सब की हिफाजत फरमा, पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह ये छोटे गुनाह नहीं ये बड़े गुनाह है, अल्लाह इससे हम सब की सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमें कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों में से बना दे, जो बात कही जाती है सुनी जाती है हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमा, या अल्लाह तू कहलवाता है मेरी जबान से मुझे इखलास भी नसीब फरमा, इखलास भी नसीब फरमा, लिल्लाहियत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह तेरे कुरान को समझने समझाने वालों में से बना दे, ऐ अल्लाह तेरे कुरान को समझने समझाने वालों में से बना दे, इल्म नाफे अता फरमा, उलूम नाफे अता फरमा, और जहां जहां लोग सुन रहे हैं सबके लिए अमल करना आसान फरमा, या अल्लाह हमारी इस मस्जिद को आबाद फरमा, आबाद करने वालों को आबाद फरमा, आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमा, या अल्लाह उनके औलादों को आबाद फरमा, ऐ अल्लाह जो कुरान के दरस में बैठे अल्लाह उनकी औलादों को भी ऐ अल्लाह आलिम कुरान बना दे, आलिम कुरान बना, आलिम कुरान बना, आशिक कुरान बना, दाई कुरान बना दे, ऐ अल्लाह नाशिर कुरान बना दे, इलाहुल आलमीन हम सब के अंदर जो भी बीमार हो घरों में हॉस्पिटल में यहाँ पर सबको शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमा, मरहूमिन मरहूमात की मगफिरत फरमा, मरहूमिन मरहूमात की मगफिरत फरमा, बीमारों को आफियत नसीब फरमा, या अल्लाह अपने फजल करम से रहम करम से हमारी हमारी आला औलाद के हमारे माँ बाप भाई बहन पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, सल्लल्लाहु تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.